نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. الحمد للہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اور جیسے کہ آپ لوگ ہر طرف دیکھ بھی رہے ہیں، کچھ عید میلاد النبی کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کو منانے کے حوالے سے، تو تھوڑا سا آج میں اس کے اوپر بات کروں گی، کیونکہ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. جب ہم میں بے شک ہم کچھ چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، لیکن جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم بہت لاجواب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بہت ہی الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں. تو اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ عربی میں تو میلاد برتھ ڈے کو کہتے ہیں، کہ کسی کی پیدائش کا موقع نا. اور عید کیا ہوتی ہے؟ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا کوئی تہوار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے جس سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ثبوت دیں، عملی ثبوت. کیونکہ ایک وہ گلٹ ہے نا ہمارے اندر، سارا سال تو ہم کوئی ثبوت دیتے نہیں ہیں. اب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ جس سے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم کتنے اچھے امتی ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو عید کا دن کے کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ عید ہم اپنی طرف سے کوئی بھی دن کو نہیں کر سکتے، وہی دن جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہو وہی عید کہلاتا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ عید کے دن نماز پڑھی جاتی ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ آپ دونوں دیکھ لیں، اس میں نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر ٹو یہ کہ عید کے دن خطبہ دیا جاتا ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ ہم عید میلاد النبی پہ نہ تو کوئی نماز ہے نہ کوئی خطبہ ہے. پھر آپ دیکھیں عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے روزے پورے ہونے کی وجہ سے پھر ہم شکرانے کے طور پہ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ جو ہے وہ حج کا موقع ہوتا ہے، پھر عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے نا، لیکن اس دن کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. کہیں پہ بھی سنت میں، کہیں پہ بھی حدیث میں یہ دلیل نہیں ملتی کہ عید میلاد النبی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ لفظ ہی جو عید میلاد النبی کا ہے یہ خود سے بنایا ہوا، جس کی کہ ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی آپ کو سند نہیں ملتی. اب آپ دیکھیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منایا اور آپ کے صحابہ کرام نے یہ دن منایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام کو تھی. ہم میں سے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ ہمیں ان سے زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تو آپ پہ جان چھڑکتے تھے، مگر کسی بھی حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کبھی اس طرح سے بیٹھ کر اور مل کے اور ایک دن مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا. آپ دیکھ لیں، اگر حضرت عمر کو، وہ تو کسی سے ڈرتے بھی نہیں تھے، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر تلوار نکال لی تھی اور فرمایا تھا جو یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس کا سر اڑا دوں گا. اب آپ خود اندازہ کیجئے، کیا وہ کسی سے ڈرنے والے تھے؟ تو کبھی ساری زندگی میں ایک دفعہ تو ان سے محبت کا حق ادا کیا ہوتا. हज़रत अली की खिलाफत में 5 दफ़ा ये दिन आया मगर उन्होंने नहीं मनाया, हालांकि खलीफा हैं, उनको कोई रोकना था किसी ने। तो ये फिर शुरू कहाँ से हुआ? आप सोचते होंगे, जब लोगों ने असल दीन को छोड़ दिया ना और ये सोच लिया कि जैसे बाकी चीज़ों के लिए एक दिन मना के काफ़ी हो जाता है, मोहब्बत का भी एक दिन रख लिया गया, किसी से मोहब्बत के इजहार का भी, माँ का भी एक दिन रख लिया गया, बाप का भी एक दिन रख दिया गया, हमने चलो ये तो एक वैसे ले लिए, इसी तरह हमने कहा कि सारा साल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार नहीं हुआ, एक दिन हम रोशनियाँ जला के और इजहार कर लें। तो ऐसी कोई भी दलील इस्लाम में तो नहीं है। हाँ, ये पता चलता है कि बहुत बाद में जाके, क्योंकि मिस्री लोग अपने बादशाहों की, अपने देवताओं की सालगिरहें मनाए करते थे, तो इसलिए जो है ना बाद में ये चीज़ मुसलमानों में भी आ गई। तो पहले तो मुअज्ज़ज़ लोगों की मनाई जाती थी सिर्फ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों को भी मनाई जाने लगी। तो ये चीज़ें बहुत बाद में आईं, सहाबा कराम के तो किसी के भी दौर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि यहाँ तक कि 12 जो रबीउल अव्वल है ये डेट भी ऑथेंटिक नहीं है। आप देखेंगे ज़्यादातर सीरत की ऑथेंटिक किताबों में यही डेट लिखी हुई है कि 9 रबीउल अव्वल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इतनी अहम शख्सियत, और क्या किसी ने उनकी डेट ना याद रखी? आप ये सोचते होंगे ना, क्यों ना उन्होंने याद रखी? हाँ, ये तो पता चलता है कि मंडे का दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, लेकिन डेट नहीं मिलती, इसलिए कि उन्होंने डेट मनानी नहीं थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि ना कभी इस चीज़ के बारे में बताया, ना कभी सहाबा कराम ने किया, इससे पता चलता है कि ये एक नई चीज़ इजाद हुई दीन में। दीन में कोई भी नया काम इजाद करना क्या है? बिदत। और हर बिदत गुमराही है। तो इसलिए हमें बिदतों को छोड़ के सुन्नतों को अपनाना है। आप किसी को जो मशवरा दे सकते हैं ऐसे वक्त में, वो यही हो सकता है कि आप को अगर शौक है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, तो कम से कम ये करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला शुरू कर दें। और आप भी अगर ये चाहते हैं, आपको बहुत शौक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करती हैं, आपने कुछ ना कुछ करना है, अब आप मचल रहे हैं, चलें सीरत का मुताला शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं तो चलो 4-6 महीने में ही जाके इंशाल्लाह ताला एक किताब कुछ मुकम्मल हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना आपको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते क्या थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, फिर आपके अखलाक क्या थे, आपकी सुन्नतें क्या थी। तो जो चीज़ हमें ज़िंदा रखनी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, आपके अखलाक है, ना कि बिदात। और अगर ये चीज़ें इतनी ही ये अहम होती आपकी सालगिरह का दिन, तो इस्लामी कैलेंडर ज़रूर इसी से शुरू होता। लेकिन देखिए, हमारा इस्लामी कैलेंडर हिजरत से स्टार्ट हो रहा है, एक कुर्बानी से, सालगिरहों से नहीं। तो यकीन वाली चीज़ लिया करें, शक वाली चीज़ों को छोड़ दें। अगर आपको कुछ भी नहीं मेरी बात से इत्तेफाक करते, तब भी यही मैं कहूँगी, जिस चीज़ का यकीन है ना वो ले लें, जो शक वाली चीज़ है, शक जिस चीज़ में हो जाए वैसे ही नहीं लेनी चाहिए ना, तो शक वाली चीज़ को आप छोड़ दीजिए। आज इस चीज़ को बिदत कहने पे भी लोग बहुत माइंड करते हैं और बहुत इसके बारे में वो करते हैं कि आपको कोई मोहब्बत नहीं है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या है? हर एक कहता है ना कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या है? उनकी सीरत को अपनाना, उनसे आपका ताल्लुक बताता है कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए ये चीज़ें नहीं है, मोहब्बत के लिए तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। लोगों से कह दें ऐ नबी कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना तो मेरी पैरवी करो। युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वह यूग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देना है और अगर अल्लाह से मोहब्बत का सबूत देना है तो आपकी पैरवी करनी होगी, फॉलो करना होगा। ये काम हमें बड़ा मुश्किल लगता है। ईद मिलादुन्नबी मनाना आसान है, इसलिए सब आसानी की तरफ जाते हैं। हमने आज आसान दीन ले लिया ना, एक एक दिन करके माँ बाप की सारा साल नाफरमानी, एक दिन फूल दे दो माँ को, ये माँ की फरमाबरदारी होगी, ये उससे मोहब्बत का इजहार हो गया। आप खुद बताइए, सारा साल आपका बच्चा आपसे बात ना करे, एक दिन लाके आपको फूल देता तो आप क्या कहेंगी? आपके जज्बात क्या होंगे? खुद ऑनेस्टली बताएं, आप क्या ये नहीं कहेंगी कि मैंने एक दिन के फूल क्या करने जो सारा साल तुम मुझे फूले रहते हो? तो यही काम हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते हैं। क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को, आपकी सुन्नतों को जिंदा करते हैं? क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानते हैं? क्या आपके तरीकों से हमें मोहब्बत है? या एक दिन की शेर पढ़ लेने से और अपने घर में रात रख लेने से हम सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हो गया? क्या आपके हुक्म हमारे लिए कोई अहमियत रखते हैं? अपने आप से ऑनेस्टली पूछें। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने इस थोड़े से सवालात मैं आपको दूंगी, आप इनका जवाब खुद लिखिए। क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का बेहतरीन इंसान समझती हूँ? सच सच बताइएगा, क्योंकि जिसको आप बेहतरीन इंसान समझती होंगी ना, हो नहीं सकता कि आप उसको फॉलो ना करें। वो तो आपका आइडियल बन जाएगा, बेस्ट इंसान को तो इंसान आइडियल बनाता है। तो फिर क्या वाकई जिसको मैं दुनिया का बेहतरीन इंसान समझती हूँ, क्या इनका जिक्र मेरी जुबान पर रहता है? इसी तरह रहता है जिस तरह के दूसरे लोगों का रहता है? क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए आप पर कसरत से दरूद भेजती हूँ? क्या ये मेरी आदत में शामिल है? उन्होंने तो ये तरीका बताया, मुझ पे दरूद भेजा करो। देखो तरीके वो बता गए, मैं उन्होंने तो बताया कि मेरे ऊपर दरूद भेजा करो, जुमे के दिन खास तौर पे, हर हफ्ते में एक दिन बता दिया कि खास तौर पे जुमे के दिन तो कसरत से भेजा करो, बाकी दिन भी भेजें। किसी नशिस्त से आप उठते हैं ना, किसी मजलिस से आप उठते हैं, अल्लाह का और उसके रसूल का नाम उसमें नहीं लिया गया होता तो हसरत बन जाएगी वो। और क्या उनके जिक्र पे सिर्फ रोने से मोहब्बत का हक अदा हो जाता है कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मुझे बड़ी मोहब्बत है? एक और बात बताएं, कुछ चंद एक सवाल आते हैं, लिखते जाएं, बाद में आप जवाब दीजिएगा। सुन्नत का इल्म होने के बावजूद कहीं मैंने अपनी मर्जी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पर तरजीह तो नहीं दी है? एक और सवाल बताइए, क्या किसी शख्स से मोहब्बत करने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है? क्या मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी इबादत, आपके अखलाक, आपके लिबास, आपके पसंद नापसंद के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये तकाजा है कि आपके तरीकों पर अमल किया जाए? क्या जिससे मोहब्बत होती है उसके तरीके पर अमल करना खुशी का बायस होता है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके मुझे खुशी महसूस होती है? क्या लोगों के डर से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने महबूब से नाता तोड़ देते हैं? क्या लोगों के डर से मैं किसी सुन्नत को छोड़ देती हूँ? क्या मेरी दुआओं में ये दुआ शामिल होती है कि या अल्लाह मुझे उन्हीं के रास्ते पर चला दे, अपने नबी के रास्ते पर चला दे? क्या मुझे क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का शौक है? क्या इस मुलाकात की तैयारी के लिए मैंने अपने अमल को सुन्नत के मुताबिक ढाला है? अब अपने रोज़ाना के थोड़े से मामूलात चेक करें कि आप जब नींद से उठती हैं तो क्या आपको मालूम है, ये आप लिखने की ज़रूरत, या लिख लें छोटी सी, कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगी कि ये चीज़ें क्या आपको मालूम है, आप किसके तरीके के मुताबिक ये करती हैं? ये एक सवाल लिख लें, ऊपर नीचे पॉइंट्स लिखें। नींद से उठने पर आपको मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? फिर रेस्टरूम में दाखिल होते वक्त क्या उनका तरीका था? फिर रेस्टरूम में जाने के बाद, ये चीज़ें सारी तो हमें सुन्नत से मिलती हैं, लेकिन क्या मुझे मालूम है रेस्टरूम में दाखिल होने के बाद क्या करते थे? एक एक चीज़, यानी यहूद ने सहाबा कराम का मजाक उड़ाया कि हाँ तुम्हारे नबी ये छोटी छोटी बातें भी तुम्हें बताते हैं। तो एक सहाबी रसूल थे, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें इस्तंजा करना भी बताते हैं, बैतुल खला को इस्तेमाल करना भी बताते हैं, यानी इतनी इतनी चीज़ों का बताया हुआ। फिर बैतुल खला से निकलते वक्त क्या आपको मालूम है कि क्या करते थे? फिर वजू करते वक्त कैसा वजू था उनका, मुझे वैसा वजू करने का शौक हो। फिर अजान के वक्त क्या करते थे? नमाज के बाद कौन से जिक्र अजकार करते थे? दुआ मांगते वक्त क्या करते थे? फिर नाश्ते में क्या खाते थे? लिबास पहनते वक्त, कपड़े पहनते वक्त कैसे कपड़े पहनते थे? वो तो ऐसे करते थे। आप खुद ही सोचे ना, थोड़ा सा सोचे, जिससे आपको मोहब्बत होती है, हाँ कोई वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे कोई फिल्म का हो, चाहे कोई कोई जिसको भी आपने अपना आइडियल बनाया हुआ, आपको ज़रूर पता होता है उसको ये रंग पसंद, उसको ये खाना पसंद, उसको वहाँ फलाना रेस्टोरेंट उसका फेवरेट है, फलानी गाड़ी उसके पास है, फलानी जगह वो रहता है, आपको सारी मालूमात होती हैं। तो बताइए, हम जो दावेदार हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के, क्या हमें ये मालूम है घर से बाहर काम पर जाते वक्त क्या करते थे, निकलते वक्त यानी उनका क्या अंदाज था, फिर चलते वक्त कैसे चलते थे, बाजार में दाखिल होते थे तो कुछ पढ़ते थे, फिर घर में दाखिल होते थे सबसे पहले क्या करते थे, क्या उनका तरीका था, खाना खाते थे तो कैसे खाते थे, खाना खाते वक्त क्या तरीका था? इतनी सारी सुन्नतें तो सिर्फ खाना खाने पे हैं, सोच सकती हैं आप, 10 से भी ऊपर सुन्नतें सिर्फ खाना खाने में। फिर पीते वक्त, ये मैं सिर्फ खाने की बात कर रही हूँ, पीते वक्त क्या करते थे, दोपहर के खाने के बाद क्या करते थे, मगरिब से इशा तक के दरमियान की आपकी क्या सुन्नतें हैं, फिर सोते वक्त की आपकी क्या सुन्नतें हैं? सोते वक्त की भी आपकी इतनी सारी, तकरीबन 10 के करीब सुन्नतें होंगी। सोने के बाद कभी भी रात को आंख खुले तो तब क्या सुन्नतें थी? फिर और मुख्तलिफ औकात की आपकी क्या सुन्नतें थी, मुसीबत के वक्त की मसलन, या कोई अहम मौका होता था, या इखलाकियात की तो चलो आप सबको काफ़ी हद तक आती हैं, लेकिन इन सब में आप, इन सब मौके पे जो हमारे ज़िंदगी के एवरी डे के मौके हैं, लेकिन ये कोई ऐसे नहीं, मैं बात कर रही कि कोई ख़ास ख़ास मौके की नहीं, जो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ आते हैं। लेकिन हर रोज़ हम रेस्टरूम जाते हैं, हर रोज़ हम खाना खाते हैं, हर रोज़ हम सोते हैं, हर रोज़ हम नींद से जागते हैं, घर से बाहर जाते हैं। अभी ये तो ऐसे चीज़ें हैं ना जो आप एवरी डे करते हैं, कि आपको कभी ख्याल आया कि मैं इस बारे में जानूं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें कैसे किया करते थे? क्या ये कभी ख्याल आया? क्या आप जानते हैं? अगर जानते भी हैं तो क्या वो सिर्फ कॉपियों में लिखा हुआ है आपने, या वो आपके अमल में है? अब ये चीज़ों का आप खुद जवाब दीजिए और खुद ही बताइए कि फिर उसके बाद हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। इंशाल्लाह ताला अब हमने ये इरादा करना है कि इंशाल्लाह हर तरबियती सेशन में हम कुछ थोड़ी थोड़ी सुन्नतें भी साथ लेकर चलेंगे, इसलिए क्योंकि ये देखिए हम जो ये काम मैं बता रही हूँ ना एवरी डे करते हैं, कितना ही अच्छा हो कि ये छोटे छोटे काम, अब देखिए मैं जैसे मैंने आपको कपड़े पहनने का कहा, जूते पहनने का इसी तरह, जूते पहनना भी एवरी डे ही है ये काम, तो अगर ये छोटे छोटे काम हम सुन्नत के मुताबिक कर लें तो आप देखेंगे आपको दोहरा फायदा हो गया। काम तो आपने करना ही है, काम तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक होने की वजह से फायदा क्या हुआ? आपको अजर भी मिल गया। इसीलिए आप लोग सवाल करते हैं ना कि मुसलमान की कैसे हर अमल ही उसके लिए अजर का बायस बन जाता है, इसलिए क्योंकि देखें मुसलमान कहने की ज़रूरत नहीं होती, जो असल सच्चा मुसलमान है ना उसका तो ध्यान ही कहीं और होता है, उसका तो हर वक्त उसकी सोच ही ये होती है कि मैं हर अमल में फॉलो करूं तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करूं, वो ये सोच के हर अमल कर रहा होता है, इस वजह से उसका हर अमल वो सोच सोच के करे ना करे उसका हर अमल फिर सुन्नत के मुताबिक है, और उसकी एक सोच है कि मैंने सारे ही अमल सुन्नत के मुताबिक करने हैं, हर अमल पे ही उसको अजर मिलेगा। क्या आपकी खुशी गमी उठना बैठना सोना जागना सब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक हैं? क्या जब उनका नाम आए तो आप दरूद भेजते हैं? एवरी डे क्या उनको याद करते हैं? किसी का तो कोई प्यारा फौत हो जाए तो वो कहते हैं कि कोई दिन नहीं ज़िंदगी में आया जब मैंने उसको याद ना किया हो, ऐसे लोग कहते हैं ना। आपकी मोहब्बत अच्छी है कि कई दिन आते हैं ज़िंदगी के अंदर जब उनको याद नहीं करते, तो इसलिए इस चीज़ को देखें, एक बात एक हदीस को समझ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की फ़कद अहब्बनी, तो उसने मुझसे मोहब्बत की। अब आप ये वाजे बात है आपके सामने, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की सुन्नत से मोहब्बत की है ना उसी ने आपसे मोहब्बत की है, बाकी लोग जिन्होंने सुन्नत से मोहब्बत नहीं की तो उनकी मोहब्बत क्या है फिर? सिर्फ दावा, सिर्फ ज़ुबानी बातें। जो लोग भी अपनी मोहब्बत का इजहार चाहते हैं, मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अडॉप्ट करें, और ये उसी सूरत में हो सकता है जबकि आपको सुन्नत का इल्म हो, सुन्नत के इल्म के बगैर आप अमल नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला एक तो ये है कि हम इंशाल्लाह सुन्नत का इल्म लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने काम हैं, आपको शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि जाहिर है आपने आज तक ऐसे ही किए हुए, मसलन कपड़े पहनना हो गया, जूते पहनना हो गया, मतलब बिला इरादा हम जो हमारी एक आदत होती है उसके मुताबिक ही हम चल रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होगी, मे बी आपको किसी जगह लिख के लगाना पड़े, लेकिन अगर आप वाकई इरादा करते हैं और आप चाहते हैं कि छोटे-छोटे कामों पे भी आपको अजर मिले, सारा दिन के हर काम में जूता पहनने में भी आपको अजर मिल जाए, खाना खाने में भी आपको अजर मिल जाए, आप कपड़े पहनने में भी आपको अजर मिल जाए, और ये यानी रेस्टरूम यूज़ करने में भी आपको अजर मिले, तो आप देखिएगा सुन्नतें फॉलो करने से आप एक दिन में यानी कितने हजारों गुना अजर पा सकते हैं, एक ही दिन में इतने छोटे-छोटे कामों के करने से तकरीबन 1,000 सुन्नतें बनती हैं ये, और ये छोटे-छोटे कामों से हैं, कोई आपको बड़ा काम नहीं करना। अब 1,000 सुन्नतें जिस बंदे ने फॉलो कर ली, आप खुद सोचें कि कितना सारा अजर उसने एक दिन में पा लिया। तो इस चीज़ की कोशिश इंशाल्लाह करनी है, नामुमकिन नहीं है ये काम। और मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, नामुमकिन नहीं है इंशाल्लाह। एक तो इसके अंदर बहुत चीज़ बड़ी हेल्प करेगी कि आप अपने घर में सबको बता दें, सबको सबके साथ शेयर कर लें, और ख़ास तौर पे बच्चों को, जब आप बच्चों तक पहुंचा देंगी ना तो आप देखेंगे कि आपको याद रहे ना रहे उनको ज़रूर याद रहता है, ठीक है? तो इसलिए एक तो आपको अजर भी मिल जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंचाने का, और दूसरा ये हो जाएगा कि घर के अंदर कोई आपको याद दहानी करने वाला हो जाएगा, और तीसरे आप सब मिल के इंशाल्लाह सुन्नतों पर अमल करेंगे। और अगर हमने बच्चों के अंदर ये डाल दी ना, तो यकीन करें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़िंदा कर दिया। और ये बता के देखें, अजर उस वक़्त ही मिलना जब आप ये समझ के करेंगी कि मैंने सुन्नत पे अमल करना है और इसका मुझे अजर मिलेगा। समझ आई बात? ऐसे नहीं, अगर किसी को एक आदत ही है कि वो आदतन मसलन कोई काम करे और सुन्नत समझ के नहीं कर रहा, कह रहा बस बचपन से इसी तरह मैं कर रहा हूँ बस, तो उसको अजर नहीं मिलेगा। अजर उसी के लिए है जो ये समझता है कि ये सुन्नत है। मसलन अब गैर मुस्लिम है, वो भी काम उसी तरह करे, दाएं हाथ से मिसाल के तौर पे खाना खा रहा है, तो क्या उसको अजर मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो सुन्नत समझ के नहीं कर रहा। समझ आई? तो आपको भी अजर तभी मिलेगा जब आप सुन्नत समझ के करेंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला सबसे पहली जो सुन्नत आपको सुबह उठने की मैं बताऊंगी, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते थे तो क्या करते थे? चेहरे पर हाथ फेरते थे। एक हदीस में है मुस्लिम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होकर उठे और नींद के आसार को ख़त्म करने के लिए चेहरे पर हाथ फेरने लगे। जैसे इंसान होता है ना, जैसे अपने वैसे ही खाली हाथ ही अपनी आंखों पे ज़रा चेहरे पे हुए। फिर उसके बाद साथ ही दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा मातना व इलैहिन नुशूर। जब आप बच्चों को सुबह जगाने के लिए जाएं ना, तो साथ साथ दुआ बोलती जाएं कि चलो बेटा ये पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अभी बच्चे उठ रहे होंगे, साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता उनको जगा रही होंगी, साथ साथ उनके कान में ये दुआ जा रही होगी, ठीक है ना? उसके बाद मिसवाक करना है। मिसवाक करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल है कि यानी आप बेशक टूथब्रश करें, आपको कोई मना नहीं है टूथब्रश करना, लेकिन साथ मिसवाक ज़रूर कर लें। पहले तो ये है कि आप जब अगर रेस्टरूम की तरफ जा रही हैं तो आपने जूता पहन के दाखिल होना है रेस्टरूम की, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बाद में ऐसा करूँगी बता दूँगी, अभी फ़िलहाल आप ये सिर्फ सुन लें कि फिर आपने रेस्टरूम में जाके क्या करना है। तो सबसे पहले फिर आपने मिसवाक के बाद नाक झाड़नी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नींद से बेदार होता है तो वो 3 दफ़ा नाक झाड़े, क्योंकि शैतान इसके नथनों में रात गुजारता है। तो 3 टाइम्स आपने नाक झाड़नी, ये वज़ू के अलावा है, ठीक है? नाक झाड़ने की समझ आती है? लेफ्ट हैंड से आप ना अपनी नाक को जैसे आप ब्लो करते हैं, थोड़ी सी ब्लो करें। फिर उसके बाद आप दोनों हाथों को 3 दफ़ा धोएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नींद से बेदार हो तो उस वक़्त तक अपना हाथ बर्तन में ना डुबोए जब तक उसे 3 मरतबा ना धो ले। यानी मतलब इनमें दबोने की बात इसलिए कि वजू उस वक्त कोई नलके तो थे नहीं, तो वजू जो है वो उससे ही होता था आपके, यानी बर्तन में हाथ डाल के उससे निकाला जाता था पानी, तो इस वजह से ये कहा गया बर्तन में हाथ ना डाले उस वक्त तक। तो ये कितनी हो गई, 5 सुन्नतें हो गई। इंशाल्लाह ताला ये 5 सुन्नतें आप लोग नेक्स्ट टाइम तक इनको खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। और चलिए मैं आपको रेस्टरूम की भी बता ही देती हूँ कि आपको रेस्टरूम में तो जाना ही पड़ेगा ना ये काम करने के लिए। तो आपने एक तो जूता पहन के दाखिल होना, दुआ पढ़नी है, और पहले बायां पाँव अंदर रखना। दुआ तो आप सबको आती है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुज़ वल खबाइस। पहले लेफ्ट फुट इन, फर्स्ट लेफ्ट फुट, ठीक है। तो ये आपने करनी है। निकलने की दुआ मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगी, और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्टरूम से बाहर आया करते थे कि, ठीक है। लेकिन ये कम से कम 6-7 सुन्नतें हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगली दफ़ा तक हमें कामयाब हो जाना चाहिए। 1 महीने के बाद हम जब दोबारा मिलेंगे तो कम से कम ये इतनी सुन्नतों को जानना, सिर्फ जानना ही नहीं अमल में लेकर आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने इसको सिर्फ आज लिख लिया और उसके बाद भूल गए तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो किताबों में बंद रहने के लिए नहीं। किताबें तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, आपके लिखने की ज़रूरत नहीं है, किताबें बहुत सारी मौजूद हैं शेल्फ्स पे। असल बात यह है कि इल्म वही ज़िंदा रहता है जो आपके अमल में आ जाए, सही है ना। तो मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना, मुश्किल काम तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से कुछ काम तो आप ऑलरेडी उम्मीद है कि कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो आप स्टार्ट कर लें जो काम मिसिंग है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इन सुन्नतों के ऊपर चलते हुए हर दफ़ा हम छोटी छोटी और सुन्नतें देखेंगे। हर तरबियती सेशन में कुछ सुन्नतें साथ हम मिला लिया करेंगे, और इतनी स्लोली हम चलेंगे कि आप इंशाल्लाह उनको अपनी ज़िंदगी में ला सकेंगे। मुश्किल नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं हर रोज़ नहीं आपको कुछ बता रही, 1 महीने बाद बता रही हूँ, ताकि आपके पास 1 month का टाइम हो। और ज़रा थोड़ा सा इतना मेहरबानी करें कि जब एक दूसरे से मिलें तो एक दूसरे से पूछ लिया करें कि अभी तक आप जो तरबियती सेशन में सुनी थी सुन्नतें, तो उनमें से कितनी अभी तक आपने कर ली हैं, ताकि दूसरे को भूल ना जाए ना। हो सकता है कि 1 महीने में याद ही ना रहे कि जी पिछले सेशन में क्या हुआ था, जब आप वापस आए तो उसके बाद दोबारा उसी हालत में हो, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा, देखें, ठीक है। इंशाल्लाह उतर आज के लिए जो आपके लिए दुआ है, वो दुआ भी थोड़ी सी इस हवाले से भी है जो कि हमने अपना क्लास में किया था सेशन, नफ्स के ऊपर बात की थी, तो उसी हवाले से ये दुआ है। मुस्लिम की है ये दुआ। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरे नफ्स को तक्वा अता फरमा, परहेजगारी अता फरमा। ये नफ्स की हमने बात बहुत की थी, अगर आपको याद हो, जिन लोगों को नहीं याद तो वो लेक्चर सुन सकते हैं। नफ्स की किस तरह की फिर बहकावे होते हैं, और हमारा कितना बड़ा दुश्मन है नफ्स, तो अल्लाह इसको परहेजगार बना दे। क्योंकि जब हम कोई नेकी का काम करने लगते हैं, शैतान तो आपको पता है ना, रमज़ान में कैद भी हो जाते हैं, पर नफ्स को किधर कैद करके आएंगे, ये नफ्स तो हमारे साथ ही रहता है, फिर भी नफ्स तो नहीं छोड़ता हमें, ये फिर भी हमें बहकाता रहता है। वह ज़क्किहा, और अल्लाह इसको पाक करते हैं ज़कात से ना, जैसे होता है ज़कात भी पाक करती है ना। आपको दुआ याद करने का तरीका बता रही हूँ। अंता खैरु मन ज़क्काहा, तो सबसे बेहतर नफ्स को पाक करने वाला है। अंता वलीयुहा व मौलाहा, तो इसका कारसाज है और मौला है, तो वली है इसका और मौला है, तो इतनी मुश्किल दुआ नहीं है। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा, अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा दे दे। ये और बहुत यकीन के साथ, बहुत खलूस के साथ मांगे, क्योंकि हमारे सबके नफूस को तकवा की ज़रूरत है, सबके नफूस को पाक होने की ज़रूरत है। नफ्से मुतमईना नहीं है हमारे पास, शायद नफ्से लवामा के स्टेप तक हम पहुंच चुके हों, या मे बी अभी तक नफ्से अम्मारा पे ही खड़े हों। तो अल्लाह हमारे नफ्स को परहेजगारी दे, वज़क्कीहा, और इसको पाक कर दे। अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलीयुहा व मौलाहा। आप ये मसनून दुआओं की किताब में भी इंशाल्लाह देख सकते हैं ये चीज़, और इंशाल्लाह ताला उससे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप अपना सुबह के वक्त का कुरान पाक की तिलावत करना आप जारी रख रहे होंगे। जारी रखिए इसलिए क्योंकि ऐसा वक्त जो सुबह का वक्त है, इसकी तिलावत की गई उसको फरिश्ते देखते हैं, हाजिर होते हैं, और इसकी ताकीद कुरान पाक में, आपको याद होगा हम पढ़ भी चुके हैं। इसलिए आप बेशक दिन भर में कितनी दफ़ा ही पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, लेकिन जो फजर के साथ नमाज के साथ पढ़ना है, नमाज में अव्वल तो पढ़ें। नमाज में नहीं पढ़ सकते तो सलाम फेर के उसके बाद, क्योंकि इतना तो हमें याद नहीं होता, उसके बाद तिलावत ज़रूर कीजिए। ख्वाह चंद आयात की ही करें मगर तिलावत ज़रूर कीजिए। और देखें ये जो हमने मसनून दुआ भी सीखी अल्हम्दुलिल्लाह, एक दुआ वो भी हो सकती है कि हम अपने अल्फाज में मांगे, जैसे हम सबको बड़ा शौक होता है। और एक है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे अल्फाज है ना, मैं उनमें मांगू दुआ। तो ये भी एक मोहब्बत का सबूत है कि जब आप मसनून दुआओं को याद करके उनको समझ के, मैं समझने की इसलिए ज़रूर बात करूंगी क्योंकि बाज़ औक़ात हम दुआओं को सिर्फ़ और सिर्फ बस ऐसे ही याद कर लेते हैं, और इसीलिए हमें वो इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमें समझ ही नहीं होती, तो समझा ही नहीं होता, तो हम कहते हैं हम अपने अल्फाज में ज़रूर मांग ले। देखिए ज़रूर आप मांगिए, अपने अल्फाज में मांगने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये भी आपकी एक मोहब्बत का सबूत है कि आप मसनून दुआओं को याद कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अल्फाज में जितना फ़ायदा है ना उनमें दुआ मांगने का, हमें तो आती भी नहीं है दुआ मांगनी। तो एक तो सुन्नत को फॉलो करने का भी आपको अजर मिल जाएगा, दुआ भी आपकी ज़्यादा कॉम्प्रेहेंसिव हो जाएगी। और देखिए इंशाल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज भी, आपको मोहब्बत का इजहार का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला मसनून दुआओं को ज़रूर याद रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट तरबियती सेशन में फिर इन सुन्नतों पे अमल के साथ, फिर हम सब कोशिश करेंगे इन सुन्नतों पे अमल के साथ फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए, और अल्लाह हमें वो ज़िंदगी दे जो सुन्नतों के मुताबिक चलने वाली ज़िंदगी हो, जिसमें हम मसनून काम कर सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।